समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं न्यूज मैगजीन आज सवेरे। आज के संग के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और साथ हैं सुभद्रा रामचंद्रन। गुड मॉर्निंग सुभद्रा।
गुड मॉर्निंग देवेंद्र, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हू हैव जॉइंड अस दिस डे। दिस इज टुडे इज 15th of April 2026। Stay with us, folks, for another interesting session of Aaj Savere. And Devendra, for starters, let's begin with some news headlines.
जी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक विशेष संसदीय सत्र में पेश किया जाएगा। ये विधेयक हर राज्य, समुदाय और क्षेत्र की आकांक्षाओं को पूरा करता है। कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से बात की है और सभी ने इस विधेयक का समर्थन किया है। इस विधेयक को कल से शनिवार तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हित में एकजुट होने के लिए सभी राजनीतिक दलों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता और इस विधेयक की प्रक्रिया में देरी नहीं की जा सकती।
बिहार's deputy chief minister and BJP leader Samrat Chaudhary will take oath as new chief minister of the state this morning. The swearing-in ceremony is scheduled to take place at Lok Bhavan in Patna at 11 a.m. He will be the first BJP leader to assume the top post in the state. Yesterday, Mr. Chaudhary met Governor Lieutenant General retired Syed Atta Hasnain at Lok Bhavan and staked his claim to form the government. He was unanimously elected as leader during NDA Legislature Party meeting. The development comes following resignation of JDU President Nitish Kumar as Chief Minister of Bihar after his election to the Rajya Sabha recently.
छत्तीसगढ़ के सिंह तेराई में बॉयलर फटने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। ये विस्फोट कल वेदांता लिमिटेड के बिजली संयंत्र में हुई। पुलिस के अनुसार बॉयलर से टरबाइन को उच्च दबाव वाली भाप की आपूर्ति करने वाली ट्यूब में जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए। उन्होंने बताया कि 4 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई और लगभग 30 घायल हो गए, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया है और प्रत्येक मृतक श्रमिक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। उन्होंने बिलासपुर मंडल के आयुक्त को इस त्रासदी की जांच करने का आदेश दिया है। जिला प्रशासन ने भी दुर्घटना की अलग से मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया है।
Around 250 people, including Rohingya refugees and Bangladeshi nationals, are feared missing after a trawler carrying them capsized in Andaman Sea while reportedly attempting to reach Malaysia. According to a joint statement by the United Nations High Commissioner for Refugees and International Organization for Migration, the vessel had departed from Teknaf in southern Bangladesh and sank amid rough seas, strong winds and overcrowded conditions. The incident is believed to have taken place on April 9, though details remain unclear. So far, only 9 survivors have been rescued. The Bangladesh Coast Guard said they were found drifting at sea by a passing vessel and later brought to safety. Authorities added that some of the rescued individuals are suspected to have links to human trafficking. UN agencies have expressed deep concern, calling the tragedy a stark reminder of the dangers faced by Rohingya refugees undertaking risky sea journeys. They said worsening conditions in refugee camps, limited access to education and livelihoods, and ongoing violence in Rakhine State are forcing many to flee. The United States has indicated that talks with Iran could resume within days, while Israel and Lebanon have launched their first direct negotiations in decades, signaling parallel diplomatic efforts to ease escalating tensions across West Asia. U.S. President Donald Trump said negotiations between Washington and Tehran may restart in Pakistan within the next 2 days. In an interview, Trump said, "Something could be happening over the next 2 days and we are more inclined to go there." The comments follow an initial round of direct talks over the weekend that failed to produce a breakthrough. The discussions focused on extending a fragile two-week ceasefire set to expire around April 21 amid heightened tensions following earlier U.S. and Israeli military actions targeting Iranian assets. Major disagreements remain over Iran's nuclear program, with Washington seeking an end to uranium enrichment, while Tehran is demanding sanctions relief and compensation. Meanwhile, diplomatic activity has expanded to the Israel-Lebanon front. Lebanon and Israel held preliminary direct talks in Washington yesterday, hosted by U.S. Secretary of State Marco Rubio. The meeting marks the first direct diplomatic engagement between the two countries since the early 1980s, as both sides attempt to reduce tensions along the southern Lebanon border. According to reports, discussions focused on security arrangements and civilian issues, including Israeli military activity and Lebanon's demand for a withdrawal from contested areas. Israel has also insisted on addressing Hezbollah's military presence as part of any broader understanding. Lebanese officials have not publicly confirmed remarks attributed to their delegation regarding Hezbollah, while the group itself has rejected the negotiations.
और न्यूज मैगजीन में प्रमुख खबरों में अब बात खेल जगत की. आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स को 32 रन से हरा दिया. चेन्नई के एमएच चिदम्बरम स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन बनाए. संजू सैमसन ने 48 रनों की पारी खेली, जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 7 विकेट पर 160 रन ही बना सकी. नूर अहमद ने 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. और आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा. यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. प्रमुख खबरों के बाद अब महानगरों से जुड़ी खबरों की बात करते हैं. सबसे पहले आइए चलते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों के साथ सुभद्रा के पास.
यस देवेंद्र, स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई. द स्टेट्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री रिकॉर्डेड 100 डिसीज्ड डोनर्स ओवर द लास्ट 102 डेज दिस ईयर, इंक्लूडिंग 11 इन अप्रैल. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अकाउंटेड फॉर 65% ऑफ डोनेशंस, रिकॉर्ड्स फ्रॉम द स्टेट ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ट्रांसटैन शो. Until April 13, organs from 100 donors facilitated 317 major organ transplants, taking the overall tally since the program began in 2008 to 8,656. The records show 233 minor organs and tissues, which takes the tally to 5,577 since 2008. Among vital organs, there were 177 kidneys, followed by livers 80, lungs 29 and hearts 28. Corneas continue to be the single largest category among tissues, with 158 transplants this year and 3,574 since 2008. The cumulative donor count has touched 2,421 since 2008. Going to Bengaluru now, Karnataka State High Level Clearance Committee approved 17 projects worth 18,430.44 crore in its 67th meeting, chaired by Chief Minister Siddaramaiah. The proposals include 11 new projects, 6 additional investments across sectors like automobiles, aerospace, pharmaceuticals, textiles and semiconductors, expected to create 15,032 jobs across 11 districts. The Karnataka Health Department has issued a nutrition advisory to promote healthier eating habits in government offices and official events. It recommends replacing typical refreshments with millet-based snacks along with low-sugar, low-fat and high-fiber food options. Suggested items include fresh fruits, vegetable salads, sprouts and unsalted nuts, while beverages should feature healthier choices like green tea, low-fat buttermilk and safe drinking water. The guidelines also call for a broader shift in catering practices at meetings, conferences and functions by encouraging millet-based meals, local cuisine and the use of brown rice instead of white rice. These measures aim to improve the overall health and well-being of around 6 lakh government employees in the state. We have one more news from Bengaluru. The 135th Ambedkar Jayanti was observed at Dr. B.R. Ambedkar School of Economic University in Bengaluru yesterday. The speakers paid rich tribute to the architect of the Indian Constitution, Baba Saheb Dr. Ambedkar, on this occasion. The chief guest of the event, former bureaucrat Ashok Dalwai, highlighted the academic excellence of Dr. Ambedkar against all odds. He emphasized that sheer intellectual brilliance helped Baba Saheb to overcome caste discrimination. He informed that Maharajas of Baroda and Kolhapur recognized his genius and patronized his higher education. He spoke about the philosophical thoughts and works of social reforms propagated by Dr. Ambedkar. Ashok Dalwai pointed out that such social reforms can only achieve true democracy and fraternity in the society. He urged the students to study and reflect upon the monumental works of Dr. Ambedkar to understand its relevance in modern India. Now let's move to Hyderabad. Telangana is currently facing a relentless heat wave as daily temperatures continue to climb across the state. In response to the escalating crisis, Panchayat Raj and Rural Development Minister Sitakka urged the public to remain vigilant. Speaking at Praja Bhavan, she advised citizens to stay indoors between 11 a.m. and 3 p.m., suggesting that essential tasks must be completed during the cooler early morning hours. For those who must venture outside, the minister emphasized the necessity of using hats or headscarves to prevent heat stroke. To provide immediate relief, the state government has directed district officials to establish public drinking water stations in all gram panchayats and mandal centers. With the meteorological department predicting these conditions will persist for several days, authorities remain on high alert to mitigate the impact of scorching weather. And Devendra, news from other cities?
Ji. संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में एक डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. प्रदर्शनी का विषय था एक भारत श्रेष्ठ भारत. डाक टिकटों के माध्यम से भारत की एकता और लोकतंत्र का उत्सव. डाक टिकट डाक विभाग द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के सहयोग से आयोजित ये तीन दिवसीय प्रदर्शनी शुक्रवार तक चलेगी. प्रदर्शनी में देश की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों को दर्शाने वाले डाक टिकटों का एक चुनिंदा संग्रह प्रस्तुत किया गया है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल दिल्ली देहरादून आर्थिक कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 12,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये एक्सप्रेसवे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा समय को लगभग 6 से 7 घंटे से घटाकर मात्र 2 से 2.5 घंटे कर देगा. उन्होंने इसे केवल दूरी कम करने वाली परियोजना नहीं बल्कि दिल्ली की आधुनिकता को देवभूमि की आध्यात्मिकता से जोड़ने वाला सेतु बताया. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पर्यावरण विभाग को नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे की समस्या से निपटने के लिए डिपॉजिट रिटर्न स्कीम डीआरसी लागू करने की संभावनाओं पर अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं. श्री सिरसा की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्लास्टिक और अन्य कचरे से जुड़ी गंभीर समस्याओं पर चर्चा की गई. श्री सिरसा ने इस पहल के जनहित पहलू पर बल देते हुए कहा कि नागरिकों व्यवसायों और रीसाइक्लर्स को एक साथ लेकर डीआरसी न केवल प्रदूषण कम करेगा बल्कि दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने में सहायता प्रदान करेगा. उन्होंने पर्यावरण विभाग को इस पहल का ढांचा एक महीने के भीतर तैयार कर समीक्षा के लिए प्रस्तुत करने को कहा. दिल्ली सरकार ने यमुना की बाढ़ से बचाने वाली दीवार के निर्माण के लिए कल मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत रिंग रोड के किनारे मजनू का टीला से ओल्ड रेलवे ब्रिज तक लगभग 4 किलोमीटर लंबी एक मजबूत सुरक्षा दीवार का निर्माण होगा. श्रीमती गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2027 के मानसून सीजन से पहले इस दीवार को तैयार कर लिया जाएगा. अब बात महाराष्ट्र यानी मुंबई से जुड़ी खबरों की. महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 1 मई से महाराष्ट्र में सभी लाइसेंसधारी रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य होगा. मंगलवार को जारी एक बयान में महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि मोटर परिवहन विभाग के 59 क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा ताकि ये सत्यापित किया जा सके कि चालक मराठी भाषा पढ़ और लिख सकते हैं या नहीं. उन्होंने कहा कि लाइसेंस जारी करने के लिए स्थानीय भाषा के ज्ञान से संबंधित नियम लंबे समय से मौजूद हैं लेकिन इसका व्यापक रूप से उल्लंघन किया जा रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि जिन चालकों को मराठी का बुनियादी ज्ञान नहीं है उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे. भारतीय वायुसेना आज प्रतिष्ठित गेटवे ऑफ इंडिया पर भारतीय वायुसेना के मार्शल अर्जुन सिंह की 107वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिष्ठित एक कार्यक्रम का आयोजन करेगी. पद्म विभूषण और विशिष्ट फ्लाइंग क्रॉस पुरस्कार से सम्मानित अर्जन सिंह ने अनुकरणीय नेतृत्व और रणनीतिक सूझबूझ से भारतीय वायुसेना का नेतृत्व किया। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार स्मारक कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के लोकाचार, व्यावसायिकता और विरासत को प्रदर्शित करने वाली कई औपचारिक और आकर्षक गतिविधियां शामिल होंगी। माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 मुंबई जोन का भव्य समापन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें महाराष्ट्र, गोवा और पुडुचेरी के युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिन्होंने विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के साथ चर्चा की और विकसित भारत एट 2047 के दृष्टिकोण को सुदृढ़ किया। इससे भारत की युवा पीढ़ी की राष्ट्र निर्माण के प्रति ऊर्जा, विचार और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन हुआ। कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण केंद्रीय बजट 2026 के महत्वपूर्ण विषयों, जिनमें विकसित कृषि और मानव पूंजी विकास शामिल है, इस पर केंद्रित विशेषज्ञ पैनल चर्चाएं सम्मिलित थीं। और चलते हैं कोलकाता, जहां पश्चिम बंगाल में आज पोइला बैशाख बंगाली नववर्ष मनाया जा रहा है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में स्थापित परंपरा के अनुसार इस दिन का स्वागत उनके प्रसिद्ध गीत ऐशो है बैसाख से किया जाता है, जिसे आप सुन रहे हैं, जो पुराने को विदा कर नए जीवन का मार्ग प्रशस्त करने का आह्वान करता है। राज्यभर में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समूहों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और सुबह की शोभा यात्राएं यानी प्रभात फेरियां आयोजित की जा रही है। नए परिधान पहन लोग उत्सवों में भाग ले रहे हैं और दक्षिणेश्वर तथा कालीघाट मंदिरों सहित अन्य मंदिरों में प्रार्थना कर रहे हैं। इस अवसर पर लोग गंगा स्नान भी करते हैं। व्यापार जगत के लिए दिन लक्ष्मी गणेश पूजा करने और नए खाते खोलने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। कोलकाता के ऐतिहासिक कॉलेज स्ट्रीट पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं आभूषण शोरूम बंगाली नववर्ष के इस शुभ अवसर पर विशेष छूट दे रहे हैं। और अब महानगरों के मौसम का हाल भी अपने श्रोताओं को बता देते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम की बात। दिल्ली में आज तापमान बढ़ेगा और 38 डिग्री जा सकता है दिन में न्यूनतम तापमान, हालांकि 18 डिग्री सेल्सियस ही रहने की संभावना है, जो सामान्य है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, तापमान 24 और 35 डिग्री रहने की संभावना है। और कोलकाता में भी साफ आसमान, तेज धूप के बीच दिन के तापमान में वृद्धि की संभावना है, जो 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। और सुभद्रा, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में मौसम कैसा रहेगा?
यस, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई, द मिनिमम टेम्परेचर वाज 24 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 36। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई अगेन, मिनिमम टेम्परेचर वाज 24 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 36 डिग्री। हैदराबाद अगेन एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद हेज, द टेम्परेचर विल हावर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 28 डिग्री एंड अ मैक्सिमम ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। And now, before we get to the history section, Devendra, today we celebrate the International Wellness Day.
Ji.
And to promote awareness and action for holistic well-being, the General Assembly proclaimed 15th April as International Wellness Day. And the day serves as a platform for education, cultural exchange and knowledge sharing, encouraging people everywhere to embrace accessible, inclusive and affordable wellness practices that enhance both personal and collective health. The United Nations recognizes the importance of health, happiness and well-being of every person. So stay happy and stay healthy.
Ji.
And get to some history. 1802, it is believed that the popular poet William Wordsworth and his sibling Dorothy witnessed many daffodil flowers during their visit to a park. This sight made such an impact on the acclaimed poet's mind that it encouraged him to pen down his path-breaking work, Daffodils. 1850, this day, the city of San Francisco, California came into existence. This magnificent place is known for its marvelous Golden Gate Bridge, which is famous. It's, of course, a famous tourist attraction. And 1870, this day, Canada stopped accepting U.S. silver coins as legal tender. And in 1923, people affected with diabetes cannot imagine their lives without insulin as of today. So it was on this day, 1923, that this medicine became available to the masses.
Gee. और वर्ष 1927 में स्विट्जरलैंड और तत्कालीन सोवियत संघ राजनयिक संबंध स्थापित करने पर सहमत हुए थे। हिमाचल प्रदेश आज अपना 79वां स्थापना दिवस मना रहा है। 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर इस राज्य का गठन हुआ था। तब से हर साल 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 1994 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसके बाद 123 देशों ने इसके समझौते पर हस्ताक्षर किए और 1994 में भारत सहित 109 देशों द्वारा गेट समझौते की स्वीकृति हुई और 2010 में निर्मित पहले क्रायोजेनिक रॉकेट जीएसएलवी D3 का प्रक्षेपण नाकाम हो गया था। और अब स्मरण उन महान विभूतियों का जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है। आज पुण्यतिथि है सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक शंभुनाथ डे की। शंभुनाथ डे ने जानलेवा महामारी हैजे की रोकथाम के लिए शोध किया। इसके लिए वो लंदन स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल में दिल की बीमारी से संबंधित शोध बीच में छोड़कर 1949 में भारत लौटे। शंभुनाथ डे ने हैजा पीड़ित व्यक्ति की किडनी पर होने वाले असर पर शोध शुरू किया। शंभुनाथ डे ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग के पूर्व निदेशक और शोधकर्ता के रूप में कार्य करते हुए यह पता लगाया कि हैजे के जीवाणु द्वारा पैदा किया गया जहर शरीर में पानी की किस प्रकार कमी करता है और रक्त के गाढ़े होने का कारण बनता है, जिससे संक्रमित व्यक्ति की जान चली जाती है। उनके इस शोध ने भारत सहित दुनिया भर में अनगिनत हैजा संक्रमितों की जीवन रक्षा में मदद की थी।
Yes, from a scientist to a painter, tributes to Italian painter, engineer, architect, sculptor Leonardo da Vinci. His two painting masterpieces are The Last Supper and Mona Lisa. And also remembering Indian artist Jaimini Roy, who was born this day in 1887. And of course, the late 20s and early 30s, he rejected his academic training and instead developed a linear, decorative, colorful style based on Bengali folk traditions. He was one of the more famous pupils of Rabindranath Tagore, whose artistic originality and contribution to the emergence of modern art in India remains unquestionable.
जी, और हम याद कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के महान नायकों में से एक अर्जन सिंह जी को। 1919 में जन्मे अर्जन सिंह जी ने बहुत कम उम्र में भारतीय वायुसेना में शामिल होकर अपने साहस और नेतृत्व का परिचय दिया। अपने पूरे करियर में उन्होंने अनुशासन, निष्ठा और देशभक्ति का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया। उनकी सबसे बड़ी भूमिका देखने को मिली 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, जब वे वायुसेना प्रमुख थे। 44 वर्ष की आयु में अर्जन सिंह ने 1 अगस्त 1964 को भारतीय वायुसेना अध्यक्ष का पद संभाला। उनके नेतृत्व में भारतीय वायुसेना ने दुश्मनों का डटकर सामना किया और देश की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साल 2002 में उन्हें 5 सितारा रैंक मार्शल ऑफ द एयरफोर्स से सम्मानित किया गया और ये सम्मान पाने वाले वे आज तक के एकमात्र अधिकारी हैं। अर्जन सिंह जी केवल एक सैनिक थे, बल्कि वे ईमानदारी, विनम्रता और सच्चे देशभक्त के प्रतीक रहे। ऐसे नायकों के जीवन प्रेरणाप्रद हैं देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने का संकल्प लेने के लिए।
Death anniversary of Jean-Paul Sartre, French novelist, playwright and exponent of existentialism, a philosophy acclaiming the freedom of the individual human being. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1964, but he declined it. Birth anniversary of Sarangi player Ustad Sultan Khan, was also a vocalist. Started his career at All India Radio, Rajkot, in Gujarat as a 20-year-old boy. Lady luck came his way when he got a chance to play with the legendary Lata Mangeshkar. Soon after that, he was transferred to AIR Mumbai radio station. He was not only deeply involved with classical music circuit, but also in the film industry. And besides this, he also performed on an international scale with Pandit Ravi Shankar on George Harrison's 1974 Dark Horse World and with tabla maestro Zakir Hussain for a project called Tabla Beat Signs.
जी, और सारंगी के उस्ताद, हृदय को छू लेने वाले पिया बसंती रे और अलबेला सजनाय और जैसे गीतों को अपनी आवाज देने वाले उस्ताद सुल्तान खान को वर्ष 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और उस्ताद सुल्तान खान को 2 बार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और महाराष्ट्र के स्वर्ण पदक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 1998 में उन्हें अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्टिस्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। Thank you. खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने वाले कवि के रूप में सम्मानित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की आज जयंती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने वर्ष 1890 में साहित्य सेवा क्षेत्र में पदार्पण किया। उन्होंने उर्दू, संस्कृत, फारसी, बांग्ला एवं अंग्रेजी का स्व अध्ययन किया। 1890 में आप कानूनगो बने और 1923 में पद से अवकाश लेने पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बनकर हिंदी साहित्य की सेवा की। उन्होंने संस्कृत छंदों का हिंदी में सफल प्रयोग किया। प्रिय प्रवास की रचना संस्कृत वर्णवृत्त में करके जहां हरिऔध जी ने खड़ी बोली को पहला महाकाव्य दिया, वहीं आम हिंदुस्तानी बोलचाल में चोखे चौपदे और चुभते चौपदे रचकर उर्दू जबान की मुहावरेदारी की शक्ति भी रेखांकित की। हरिऔध जी आरंभ में नाटक तथा उपन्यास लेखन की ओर आकर्षित हुए। हरिऔध जी की दो नाट्यकृतियां प्रद्युम्न विजय तथा रुक्मणी परिणय 1893 और 94 में प्रकाशित हुई और 1894 में ही इनका प्रथम उपन्यास प्रेम कांता भी आया।
Edward James Cooley, this rhythm and blues singer-songwriter from Atlanta, Georgia, had co-penned the very popular legendary song Fever along with Elvis Presley's future songwriter Otis Blackwell. This iconic song generated more than hundreds of covers, friends. Artists from various genres picked it up and made it their own. Eddie, who co-wrote the song, was born and died on the same day, that's April 15, 1933 was his birth year, while his death happened in 2020.
The night sun lights up the daytime.
1894, Chattanooga, Tennessee, remembering one of the greatest blues singers, Bessie Smith, known for her in her lifetime as the Empress of the Blues. She was a bold, supremely confident artist who often disdained the use of microphone and whose art expressed the frustrations and hopes of a whole generation of Afro-Americans.
Spending my money, I didn't care. I carried my...
And Southern country singer guitarist Chris Stapleton celebrates his birthday today, friends. In 2007, he became the frontman for the bluegrass group Steel Drivers, and 3 years later, he founded a Southern rock band called Johnson Brothers. Stapleton enjoyed a string of albums that had a mix of old country, soul, lots of gritty, Southern rock, a big time hit is playing in the background called Starting Over.
आज जयंती है हिंदी फिल्मों के शीर्ष गीतकार हसरत जयपुरी की। राजस्थान के जयपुर में जन्मे हसरत 1940 में पहुंच गए माया नगरी और यहीं से शुरू हुआ उनके गीतकार जीवन का नया सफर। हालांकि संघर्ष अभी बाकी था। मुंबई की बस में कंडक्टरी करते करते अपने शौक को पूरा करने के लिए हसरत मुशायरे में जाने लगे, जहां एक दिन उन पर नजर पड़ी पृथ्वीराज कपूर की। उन्होंने हसरत को अपने बेटे राज कपूर से मिलवाया और इस दौरान राज कपूर भी अपनी आगामी फिल्म बरसात की तैयारी में लगे थे और इस फिल्म के लिए हसरत ने अपना पहला गीत लिखा, जिया बेकरार है छाई बहार है। ये गीत आज भी लोग गुनगुनाते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी असंख्य गीत उन्होंने लिखे जो लोकप्रिय हुए। कुछ नगमे उनके लिखे हुए।
दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊंगा। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत।
बिल्कुल ठीक ही लिखा था हसरत जयपुरी ने कि तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, और बिल्कुल आप जैसे संगीतकार, आप जैसे गीतकारों को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। फिलहाल श्रोताओं, दीजिए हमें अनुमति आज सवेरे न्यूज मैगजीन प्रोग्राम यहीं समाप्त करने की।
नमस्कार, नमस्कार।